हरे कृष्ण। सार्वभौम प्रभु की, सार्वभौम का अर्थ है प्रमुख, चीफ। यहाँ पर हमारे वैष्णव सभा में प्रमुख कथावाचक थे, इसलिए सार्वभौम प्रभु, तो उनका हम हार्दिक धन्यवाद करेंगे। हरि बोल। तो बहुत प्रभु जी ने बहुत सुंदर सुनाया बलराम जी के बारे में, क्योंकि दो विचार होते हैं कथा में, एक होता है तत्व विचार और दूसरा होता है लीला विचार, तो दोनों का संयोग आवश्यक है तभी कथा का पूरा लाभ मिलता है। तो इसलिए प्रभु जी ने तत्व विचार प्रस्तुत किया और वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और जब ये तत्व स्पष्ट होते हैं हमारा संबंध ज्ञान स्थापित होता है, हम जानते हैं कि बलराम जी कौन हैं, कृष्ण कौन हैं, हम तत्व से अच्छी तरह समझ लेते हैं, उनकी विभूतियों को समझ लेते हैं, उनके ऐश्वर्यों को समझ लेते हैं, उसके उपरांत उसके बाद हम उनकी लीलाओं का वास्तव में आनंद ले सकते हैं। तो इसलिए हमेशा ये सुझाव दिया जाता है कि भागवत के जो पहले 9 स्कंद हैं उसका अध्ययन किया जाए, उसके बाद फिर हम दशम स्कंद में प्रवेश करें, तो फिर लीलाओं का निश्चित रूप से हम लोग आनंद उठा पाए। तो जैसे कि बताया कि भगवान बलराम अपना विस्तार करते हैं संकर्षण के रूप में, और ये संकर्षण एक रूप से ये भी बताया एक जगह पर श्रील प्रभुपाद ने कि अहंकार के अधिष्ठाता है, चतुर्व्यूह विस्तार होते हैं, जो दूसरा चतुर्व्यूह विस्तार है वो है संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और वासुदेव। तो ये जो संकर्षण का जो विस्तार है ये अहंकार के अधिष्ठाता हैं, और प्रद्युम्न जो है वो बुद्धि के अधिष्ठाता हैं, और अनिरुद्ध जो है वो मन के अधिष्ठाता हैं, और वासुदेव जो है वो चेतना के, कॉन्शियसनेस के अधिष्ठाता हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि बलराम जी को, जिनको आदि गुरु कहा गया है, जो अखंड गुरु तत्व हैं, तो उनकी जब कृपा प्राप्त होती है तो हमारे अहंकार, हमारा जो हमारे अहंकार है वो शुद्ध होता है, हमारी चेतना शुद्ध होती है। अहंकार शुद्ध होने का अर्थ ये है कि हम लोग आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करते हैं। भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने का सबसे जो सूक्ष्म, जिसको परत कह सकते हैं, सटल, सबसे सटल जो लेयर है वो है फॉल्स ईगो। तो इसको पार करने के लिए हमें बलराम जी की कृपा की आवश्यकता पड़ती है, और इसलिए जोर दिया जाता है कि हम गुरु के निकट रहें। तो इसलिए जब कोई गुरु के निकट रहता है तो उसके ऊपर बलराम जी की कृपा होती है, इसलिए नरोत्तमदास ठाकुर ने कहा है श्री गुरु। श्री गुरु का अर्थ यही है कि बलराम जी की कृपा होती है और साथ में श्रीमती राधारानी की कृपा भी हो जाती है, तो दोनों की ही कृपा एक साथ मिल जाती है गुरु की सेवा से, क्योंकि गुरु जो है वो बलराम जी के प्रतिनिधि हैं और श्रीमती राधारानी की प्रतिनिधि हैं। बलराम जी की कृपा से हम लोग प्रवेश करते हैं ब्रज में, और श्रीमती राधारानी की कृपा से हम उनकी आध्यात्मिक अंतरंग लीलाओं में प्रवेश कर सकते हैं। तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम लोग अगर आध्यात्मिक जगत में जाना चाहते हैं तो इस अहंकार के परत को पार करना होगा, और इन कथाओं के द्वारा हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। बलराम जी की विशेष कृपा है हम सब भक्तों के ऊपर। यहाँ पर पंच दिवसीय, यहाँ पे लिखा है पंचरूप, तो यहाँ पंचरूप यही है कि 5 दिन में हम लोग भगवान के बारे में सुन रहे हैं, और कथा के माध्यम से हम लोग भगवान की कृपा प्राप्त कर रहे हैं। तो ये वो प्रसंग है जहाँ पर भगवान कृष्ण दंतवत वक्र का वध कर चुके हैं और विदुरथ का भी वध कर चुके हैं, और ये इसके आगे का प्रसंग है। और आप जानते हैं कि हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों ने भी बतलाया है कि दंत वक्र के वध के बाद श्री कृष्ण ब्रजवासियों के साथ, अपने परिकरों के साथ, अपने मूल स्वरूप में गोलोक वृंदावन वापस चले गए, और जो उनका विस्तार है वासुदेव श्री कृष्ण, वो उन्होंने उन लीलाओं को आगे बढ़ाया। तो इस तरह से इस लीला के उपरांत जहाँ पर श्री कृष्ण ने दंत वक्र का वध किया और विदुरथ का वध किया, उसके उपरांत बलराम जी के बारे में यहाँ बताया गया। तब बलराम जी ने सुना कि कुरुगण पांडवों के साथ युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, तटस्थ होने के कारण वे तीर्थ स्थानों में स्नान के लिए जाने का बहाना करके वहां से कूच कर गए। तो बलराम जी इस युद्ध में भाग नहीं लेना चाहते थे और बलराम जी वहां से निकल गए। और क्योंकि उनने ये भी देखा कि भीम और दुर्योधन आपस में युद्ध करेंगे, वो युद्ध व्यर्थ होगा, क्योंकि भीम जो है वो शक्ति में अधिक हैं, ज़्यादा हैं, और दुर्योधन कला में, युद्ध कला में ज़्यादा दक्ष हैं। तो आपस में लड़ते रहेंगे, झगड़ते रहेंगे, तो कोई लाभ नहीं होगा। तो अच्छा यही है कि वो स्वयं ही निकल जाएं और किसी का उन्होंने पक्ष नहीं लिया। तो बलराम जी फिर तीर्थाटन के लिए निकल गए और अनेकों स्थानों से गुजरते हुए गए। हम लोगों ने नित्यानंद प्रभु की लीला में भी देखा कि नित्यानंद प्रभु जब एक चक्र धाम में थे तो 12 साल की उम्र में एक सन्यासी आए जिनका नाम था शंकरारण्य, वो उनको लेके गए और 20 साल तक इसी तरह से नित्यानंद प्रभु ने भी पूरे भारतवर्ष की यात्रा की, तीर्थ स्थानों की यात्रा की, जिस तरह से बलराम जी ने किया। तो बलराम जी ने जैसा किया वैसे ही नित्यानंद प्रभु ने किया, क्योंकि कोई भेद नहीं है उन पर। तो बलराम जी ने चौड़े बिंदु सरस सरोवर त्रिपकूप सुदर्शन विशाल ब्रह्मतीर्थ चक्रतीर्थ तथा पूर्ववाणी सरस्वती को देखा। हे भारत, वह यमुना तथा गंगा नदियों के तटवर्ती सारे इस तीर्थ स्थानों में गए और तब वह नैमिषारण्य आए जहाँ ऋषिगण बृहत यज्ञ संपन्न कर रहे थे। हरे कृष्ण। भगवान के आगमन पर उन्हें पहचान कर दीर्घ काल के यज्ञ कर रहे मुनियों ने खड़े होकर नमस्कार करके तथा उनकी पूजा करके समुचित ढंग से उनका सत्कार किया। तो बहुत बड़ी सभा वहाँ ऋषि मुनियों की एकत्रित थी नैमिषारण्य में और वहाँ पर कथा प्रारंभ होने वाली थी। तो जैसे उन ऋषि मुनियों ने देखा कि बलराम जी वहाँ पर पधारे हैं तो उन्होंने सब ने आदर सत्कार किया। अपनी टोली समेत इस प्रकार पूजित होकर भगवान ने सम्मान आसन ग्रहण किया। तब उन्होंने देखा कि व्यासदेव का शिष्य रोमहर्षण बैठा ही रहा था। तो रोमहर्षण जो सूत थे वो बैठे थे व्यास आसन में और बलराम जी को देखकर ना वो खड़े हुए ना किसी तरह से उन्होंने आदर सत्कार प्रकट किया। हालांकि अन्य ऋषि मुनि ने तो ऐसा किया लेकिन रोमहर्षण सूत ने नहीं किया। बलराम ये देखकर अत्यंत क्रुद्ध हुए कि ये सूद जाति का ये सदस्य किस तरह उठकर खड़े होने, नमस्कार करने या हाथ जोड़ने में असफल रहा है और किस तरह समस्त विद्वान ब्राह्मणों से ऊपर बैठा हुआ है। मतलब वक्ता अगर प्रवचन दे रहा और सामने कोई वरिष्ठ वैष्णव आए हैं या वरिष्ठ वैष्णव सामने से गुजरते हैं तो शिष्टाचार ये है कि अगर व्यास आसन से नहीं उठे तो कम से कम प्रणाम तो करें हाथ जोड़कर और आदर की भावना प्रकट करें, ये शिष्टाचार है। और कभी कोई वरिष्ठ वैष्णव आते हैं तो अपने आप ही हमें व्यास आसन त्याग देना चाहिए। कहने का तात्पर्य ये है कि वरिष्ठ वैष्णवों के सामने बोलने से पहले या तो वरिष्ठ वैष्णवों की अनुमति हो तब तो बोला जाए, और अगर ऐसी अनुमति नहीं है तो फिर शांत रहा जाए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि व्यासासन जो है ये व्यास देव जी का आसन है, ये ना आपका आसन है ना हमारा आसन है, ये व्यास देव जी का आसन है और व्यास देव जी की कृपा से ही कोई यहाँ पर कथा कर सकता है। और ये व्यास देव जी की कृपा प्राप्त होती है गुरु परंपरा के आधार पर। तो इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए। जब रोमहर्षण सुदिश्रा का कथा कर रहे थे और ये तो साक्षात बलराम जी वहां पर आए थे, भगवान सामने आकर खड़े थे, बलराम जी बैठे थे सामने, तो रोमहर्षण सूत ने किसी तरह से किसी भी मुद्रा से उन्होंने आदर सत्कार नहीं किया। तो बलराम ने कहा, चूंकि अनुचित रीति से संकर विवाह से उत्पन्न ये मूर्ख इन सारे ब्राह्मणों से ऊपर बैठा है और मुझ धर्म रक्षक से भी ऊपर, इसलिए ये मृत्यु का पात्र है। यानी कि ऊपर बैठना जो है बहुत खतरनाक है, नीचे बैठना बहुत ज्यादा सुरक्षित स्थान है, आप लोगों का स्थान बड़ा सुरक्षित है, अगर आप गिरेंगे भी तो आपको चोट नहीं लगेगी, यहां से जो गिरेगा तो बहुत खतरा है। तो जितना ऊपर बैठेंगे उतना ही ज्यादा खतरा है। ब्रह्मा जी का पद जो है सबसे ज्यादा खतरनाक है कि सबसे ज्यादा ऊपर वही बैठे, इसलिए ब्रह्मा जी बार बार प्रार्थना करते रहते हैं कि मुझे अहंकार ना आ जाए कि मैं सृष्टि करता हूं, मैं सृष्टि करता हूं, सबसे ऊंचा पद प्रदान किया गया उनको। तो इसलिए ये व्यास आसन भी ऐसा ही स्थान है। तो यहां पर बता रहे हैं कि संकर विवाह हुआ। ये संकर विवाह क्या है? दो प्रकार के विवाह बताए गए, प्रतिलोम विवाह और अनुलोम विवाह। प्रभुपाद ने कृष्णा पुस्तक में इसका वर्णन किया है। प्रतिलोम विवाह का मतलब है कि पत्नी ब्राह्मण की पुत्री है और जो पति है वह क्षत्रिय का पुत्र है, तो ऐसे विवाह को प्रतिलोम कहा गया है। और इसका उल्टा अगर होता है और पत्नी अगर क्षत्रिय की पुत्री है और जो पति है वो ब्राह्मण का पुत्र है तो उसको क्या कहा जाता है? अनुलोम विवाह कहा जाता है। तो अनुलोम विवाह जो है उसकी अनुमति होती है लेकिन प्रतिलोम विवाह की अनुमति नहीं होती है। ऐसे विवाह को संकर विवाह कहा जाता है। कलयुग में तो हर प्रकार के विवाह ही संकर विवाह है, तो वर्णाशंकर की प्रधानता है कलयुग में। खैर, विवाह के बारे में हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, प्रभु जी ने हमें संकेत किया था। तो यहाँ पर तो यद्यपि वह दिव्य मुनि व्यास का शिष्य है, उसने उनसे अनेक शास्त्रों को भली भांति सीखा है जिसमें धार्मिक कर्तव्यों की संहिताएं, इतिहास तथा पुराण सम्मिलित हैं, किंतु इस सारे अध्ययन से उसमें सद्गुण उत्पन्न नहीं हुए। शास्त्रों का अध्ययन किया, ग्रंथों का अध्ययन किया लेकिन कोई सद्गुण उत्पन्न नहीं हुए तो फिर क्या लाभ है कि नहीं? शास्त्रों का अध्ययन करने का मतलब ये है कि क्या होना चाहिए ये बता रहे आगे। प्रत्युत उसका शास्त्र अध्ययन उस नट के द्वारा अपना अंश अध्ययन करने की तरह है। जैसे एक कलाकार होता है, उसको कुछ डायलॉग्स बोलने पड़ते हैं ड्रामा में, तो वो डायलॉग्स याद करके वो बोलता है, उतना ही उसको पता है। वास्तव में तत्ववेता नहीं है, शास्त्रों का ज्ञाता नहीं है, लेकिन जितना उसको डायलॉग्स याद करने के लिए कहा जाता है उतना याद करके वो बोल देता है। लेकिन अगर श्रोता अगर वो विज्ञ ना हो तो वो ये समझेंगे कि वाह कितना बड़ा विद्वान है। लेकिन श्रोतागण में अगर कोई विद्वान श्रोतागण बैठा हो, जैसे सार्वभौम प्रभु बैठे हों, वो तो देखते ही पहचान लेंगे कि ये तो कलाकार बैठा है, ड्रामेबाज बैठा है, ये असली विद्वान है। तो इस प्रकार यहाँ पर बताया गया, क्योंकि वह ना तो आत्मसंयमी है ना विनीत है, ये दो लक्षण होने चाहिए, आत्मसंयमी और साथ में विनीत, यानी विनयशीलता। विनयशीलता का जब अभाव होता है तो फिर बहुत खतरा है। शास्त्रों का अध्ययन करने का निष्कर्ष यही है कि दो लक्षण प्रकट होने चाहिए, आत्मसंयम होना चाहिए और साथ में विनम्रता होनी चाहिए। तो ऐसा कोई लक्षण नहीं दिखाई दे रहा था। जैसे कृष्णदास कविराज गोस्वामी बहर बता रहे हैं चैतन्य चरितामृत, बहु शास्त्रे बहु वाक्य चित्ते ब्रह्म होय, साध्य साधन श्रेष्ठ ना होय निश्चय। मतलब क्या है कि अगर कोई किताबी कीड़ा बन जाता है, बहुत ज्यादा किताबें पढ़ लेता है, बहुत ज्यादा शास्त्र पढ़ लेता है तो फिर क्या होता है, या बहुत सारी टीकाओं को सुन लेता है, बहुत सारे उपदेश सुन लेता है अलग अलग लोगों से, तो क्या होता है कि हृदय में शंका जागृत हो जाती है, चित्ते भ्रम होए, चित्त उसका भ्रमित हो जाता है, साध्यम साध्य श्रेष्ठ ना होए निश्चय। और इस कारण से क्या होता है कि वो जीवन का लक्ष्य क्या है, साधन साध्य क्या है, उसको ठीक तरह समझ नहीं पाता है। मतलब वैष्णव ग्रंथों को छोड़कर जो परंपरा से हटकर है और परंपरा में नहीं है, उन ग्रंथों को छोड़कर वैदिक शास्त्रों में और भी कई, जैसे कि उपनिषद हैं बहुत सारे, चार वेद हैं और अन्य पुराण भी हैं, और सब में घुस जाता है, तांत्रिक शास्त्र भी हैं, और अंत में फिर उसको क्या निष्कर्ष मिलता है, उसको ऐसा लगता है कि गुरु को शायद इतना ज्ञान है ही नहीं, वो तो कुछ ज्ञान की बातें करते ही नहीं है। तो ये निष्कर्ष जब निकलता है शिष्य का, तो इसका मतलब क्या है कि उसका चित्त भ्रमित हो गया। तो ऐसा ही कुछ लक्षण नजर आ रहा है बलराम जैसा कह रहे हैं। वे व्यर्थ ही विद्वान होने का स्वांग रचता है यद्यपि अपने मन को जीत सकने में विफल रहा है। तो बलराम जी कह रहे हैं कि इस संसार में ऐसे कई धूर्त हैं जो कथावाचक के रूप में अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं, अपने आप को विद्वान घोषित कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा अधर्मी है। तो बलराम जी कह रहे हैं कि इस संसार में मेरे अवतार का उद्देश्य ही यही है कि ऐसे बनावटी लोगों का वध किया जाए जो धार्मिक बनने का स्वांग रचते हैं, निस्संदेह वे सबसे बड़े पापी धूर्त हैं। तो इसलिए भागवत कथा को एक व्यवसाय बनाना एक बहुत बड़ा अपराध है, बहुत बड़ा पाप है। और ऐसे में ऐसे कथावाचक और उनके जो शिष्यगण हैं तथाकथित, दोनों को नरक में जाना पड़ता है, भागवत को जो व्यवसाय बना जाता है। तो इसलिए बहुत ये बहुत ही संदेश युक्त कथा है, और हम सबको भी बहुत सावधान रहना चाहिए कि हमारी जो कथा करने का जो प्रक्रिया है वो केवल क्या है, सेवा है। हम लोग यहाँ पर कथा करते हैं सेवा के दृष्टिकोण से, भगवान का गुणगान करने के लिए, गुरु परंपरा का गुणगान करने के लिए। अगर इस भावना से कथा की जाए तो हम सुरक्षित हैं, लेकिन अपने मनोरंजन के लिए, उपभोग के लिए अगर कथा करते हैं और व्यवसाय बना लेते हैं तो फिर बहुत बड़ा खतरा है। यद्यपि भगवान बलराम ने अपवित्र लोगों को मारना बंद कर दिया था, किंतु रोम हर्षण की मृत्यु तो होनी थी, इसलिए ऐसा कहकर भगवान ने कुछ घास का एक तिनका उठाकर उसकी नोक से छूकर, नाक होना चाहिए उसकी नोक से, अच्छा जो घास का जो नोक है, तिनके का जो नोक है, उस नोक से छूकर उसे मार डाला। कितनी आसानी से मार दिया बलराम जी ने, वो तिनके के नोक से ऐसे छुआ, बस छुट्टी हो गई। तो बलराम जी को वो भी आवश्यक नहीं होता कि तिनके भी कोई भी आवश्यकता नहीं है, उनकी इच्छा मात्र से ही वो मर जाते हैं। लेकिन भगवान इस प्रकार लीला करते हैं और ये दिखाते हैं कि वास्तव में ऐसे लोगों का यही परिणाम होना चाहिए। सारे मुनि लेकिन अत्यंत दुखी हो गए, क्योंकि सारे मुनि ऋषियों ने उनको वहां बिठाया था व्यासासन में। ये तो सही था कि वो स्वयं व्यासासन में तो नहीं बैठे, उनको बिठाया गया था। तो ऋषि मुनि जो वहां एकत्रित हुए थे तो वो सब बड़े दुखी हुए और हाय हाय कहकर चिल्लाने लगे। क्या चिल्लाने लगे? हाय हाय। उन्होंने भगवान शंकर से कहा, हे प्रभु, आपने ये एक अधार्मिक कृत्य किया है। तो भगवान की लीलाएं मोहित करती हैं सबको, बड़े बड़े ऋषि मुनि भी मोहित हो जाते हैं भगवान की लीला से, समझ नहीं पाते हैं कि भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं, भगवान असुरों का साथ ही क्यों देते हैं। अगर आप भगवान की लीलाओं को सुनेंगे तो ऐसा ही लगेगा। वामन देव के रूप में आए, बलि महाराज को छल दिया है ना, और प्रह्लाद महाराज का साथ दिया, नरहरि रूप धारण करके हिरण्यकश्यपु का वध किया। भगवान की लीलाएं सुनने में ऐसा ही लगता है। अगर इसका तत्व को ना समझाया जाए तो ऐसा ही लगेगा साधारण व्यक्ति को कि भगवान तो केवल देवताओं का पक्षपात करते हैं, असुरों को तो छल कपट से मारते रहते हैं, और बलि महाराज जब वो भी स्वयं इंद्र बनेंगे तो अभी जो इंद्र विराजमान है, जो अपने सिंहासन को नहीं छोड़ेंगे, तो क्या करेंगे भगवान, उनको सिंहासन से हटाएंगे और बलि महाराज को बिठाएंगे। तो ऐसे में जो भक्त नहीं है वो भगवान की इन लीलाओं को नहीं समझते। भक्त्यामाम अभी जानती यवान यावन या सस्मे तत्वता। तो भगवान भी गीता में ये कह रहे हैं, जो मुझे तत्व से जानना चाहता है तो उसको भक्त बनना पड़ेगा मेरा। तो भक्ति एक माध्यम है। हे यदियों के प्रिय, हमने उसे आध्यात्मिक गुरु का आसन प्रदान किया था और उसे दीर्घ आयु के लिए एवं जब तक ये सत्र चलता है तब तक भौतिक पीड़ा से मुक्ति के लिए वचन दिया था। दोनों ही बेकार हो गया। सबने वचन दिया था कि आप दीर्घायु भवा, है ना, वो भी खत्म हो गया एक दिन के सही, वो दीर्घायु समाप्त हो गया। और साथ में आध्यात्मिक गुरु का आसन प्रदान किया था तो आसन से भी गिर पड़े बेचारे। आपने अनजाने में एक ब्राह्मण का वध किया है। हे योगेश्वर, शास्त्रों के आदेश भी आपको आज्ञा नहीं दे सकते, किंतु आप स्वेच्छा से ब्राह्मण के इस वध के लिए संस्तुत शुद्धि कर लेंगे तो हे सारे जगत के पावन करता, सामान्य लोग आपके उदाहरण से अत्यधिक लाभान्वित होंगे। तो हालांकि भगवान तो निष्पाप हैं और उनके ऊपर कोई भी पाप नहीं लगता है, लेकिन लोग आगे चलकर इसको लीला को सुनकर गलत ना समझ लें तो बलराम जी आगे क्या कह रहे हैं, मैं इस हत्या के लिए अवश्य ही प्रायश्चित करूंगा, क्योंकि मैं सामान्य लोगों के प्रति दया दिखाना चाहता हूं, इसलिए कृपा करके मुझे जो कुछ अनुष्ठान सर्वप्रथम करना हो उसका विधान करें। हे मुनि, कुछ कहिए तो, आपने उसे जो भी दीर्घायु शक्ति तथा इंद्र शक्ति के लिए वचन दिए हैं उन्हें मैं पूरा करवा दूंगा। ऋषियों ने कहा, हे राम, आप ऐसा करें कि आपकी तथा आपके कुछ अस्त्र की शक्ति एवं साथ ही हमारा वचन तथा रोमहर्षण की मृत्यु, ये सभी बने रहे। भगवान ने कहा, वेद हमें उपदेश देते हैं कि मनुष्य की आत्मा ही पुत्र रूप में पुनः जन्म लेती है। इस तरह रोमहर्षण का पुत्र पुराणों का वक्ता बने और वह दीर्घायु प्रबल इंद्रियों तथा बल से युक्त हो। हे मुनि श्रेष्ठों, आप मुझे अपनी इच्छा बतला दें, मैं उसे अवश्य पूरा करूंगा। और हे बुद्धिमान आत्माओं, मेरे लिए समुचित प्रायश्चित का भली भांति निर्धारण कर दें, क्योंकि मैं ये नहीं जानता कि वह क्या हो सकता है। ऋषियों ने कहा, एक भयावना असुर जिसका नाम बलवल है। तो बलराम जी कह रहे हैं कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं बताइए। तो ऋषि मुनि कह रहे हैं कि बलवल नाम का असुर है और वो उत्पात मचा रहा है। जब भी हम लोग यज्ञ करते हैं तो यहां पर आके परेशान करता है, तो आप कुछ करें उसका। इसका नाम बलवल है और जो इलवल का पुत्र है उसके पिता का नाम क्या है? इलवल। इलवल का नाम बलवल। हर प्रतिपदा को अर्थात शुक्ल पक्ष के पहले दिन यहां आता है और हमारे यज्ञ को दूषित करता है। कृपा करके उस पापी असुर का वध कर दें जो हमारे ऊपर पीप रक्त मल मूत्र शराब तथा मांस गिराता रहता है। आप हमारे लिए यही सबसे उत्तम सेवा कर सकते हैं। तत्पश्चात आप 12 महीने तक गंभीर ध्यान की मुद्रा में भारतवर्ष की परिक्रमा करें और तपस्या करते हुए विविध पवित्र तीर्थ स्थानों में स्नान करें। इस तरह आप शुद्ध हो सकेंगे। ऋषि मुनि कह रहे हैं बलराम जी को। तो ऋषि मुनि ऐसा कह रहे हैं कि आप शुद्ध हो जाएंगे। आपने क्या किया है? रोमहर्षण शुद्ध का वध किया। अगर आप बीलबल का वध करते हैं उसके बाद तीर्थ स्थानों की यात्रा करेंगे तो फिर आप शुद्ध हो जाएंगे। हाँ, ऋषि मुनि ने भागवत नहीं सुना और भागवत सुनने से पहले ये घटना घटित हो गई, इस कारण से ये कह रहे हो, इस प्रकार कह रहे हैं। तो जो भागवत नहीं सुनते हैं उनके साथ यही होता है ना, वो भागवत नहीं रहते, भोगवत हो रहते हैं। वो भोगवत होते हैं, भागवत नहीं होते फिर, जो भागवत कथा का श्रवण नहीं करते हैं। तो ये भागवत कथा हमें निर्मल बनाता है, हमें ज्ञान देता है कि भगवान कौन है, फिर हम लोग इस तरह के मोह में नहीं फंसते हैं। सुखदेव गोस्वामी आगे कह रहे हैं अगले अध्याय में, हे राजा, तब प्रतिपदा के दिन एक प्रचंड तथा भयावना झंझावत आया जिसे चारों ओर धूल बिखर गई और सर्वत्र पीप की दुर्गंध फैल गई। इसके बाद यज्ञशाला के क्षेत्र में बलवल द्वारा भेजी गई घृणित वस्तुओं की वर्षा होने लगी। तत्पश्चात वह असुर हाथ में त्रिशूल साक्षात प्रकट हुए। विशाल का असुर काले कज्जल के पिंड जैसा लग रहा था। उसकी चोटी तथा दाढ़ी पिघले तांबे जैसी थी, मतलब उसकी जो दाढ़ी थी वो तांबे की तरह थी। उसके चेहरे में भयावने दांत थे तथा भुएं गड़े में घुसी थी। उसे देखकर बलराम ने शत्रु सेनाओं को खंड खंड कर देने वाली अपनी गदा और असुरों को दंड देने वाले अपने हल का स्मरण किया। तो भगवान बलराम को हलधर भी कहा गया। जैसे हमने पहले ही बताया था कि हलधर क्यों कहा जाता है बलराम जी को, इसके पीछे तत्व क्या है, तो हमने श्री गौर गोविंद महाराज से सुना था, बड़ा अच्छा बताया उन्होंने कि हल जो धारण करते हैं उसके द्वारा हमारे मन को उपजाऊ बनाते हैं भगवान बलराम। हमारा मन जो है अनर्थों से भरा हुआ है और अनर्थों के कारण हमारा ये जो मन है वो उपजाऊ नहीं है, और जब तक ये मन उपजाऊ नहीं बनेगा तब तक भक्ति देवी कैसे निवास करेंगे। तो बलराम जी क्या करते हैं, जब हम गुरु की सेवा करते हैं तो बलराम जी क्या करते हैं, बलराम जी हमारे मन में हल चलाते हैं और हल चला के सारे अनर्थों को बाहर निकालते हैं। और जैसे ही अनर्थ बाहर होते हैं, अनर्थ निवृत्ति होती है, हमारे हृदय में भगवत भक्ति के लिए निष्ठा जागृत होती है। तो इस तरह से हम भी ये चाहेंगे कि आज बलराम जी हमारे मन में खूब हल चलाएं, है ना, हल भी चलाएं और गदा भी चलाएं हमारे ऊपर, तब जाके हम लोग अनर्थों से दूर हो पाए। उसे देखकर बलराम ने शत्रु सेनाओं को खंड खंड कर देने वाले अपने गदा और असुरों को दंड देने वाले अपने हल का स्मरण किया। इस प्रकार बुलाए जाने पर उनके दोनों हथियार तुरंत ही उनके समक्ष प्रकट हो गए। जो ही बलवल असुर आकाश में उड़ा, भगवान बलराम ने अपने हल की नोक से उसे पकड़ लिया, ऐसे, है ना, वो उड़ने लगा तो हल की नोक से ऐसे पकड़ा उस असुर को, और इस ब्राह्मण उत्पीड़क के सिर पर अत्यंत क्रुद्ध होकर अपनी गदा से प्रहार किया। मतलब हल की नोक से पकड़ा और फिर गदा से प्रहार किया। बलवल पीड़ा से चिल्ला उठा और पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसका सिर फट गया और उसमें खून का फव्वारा निकलने लगा। वह विद्युत पात से प्रदारित लाल गेरू पर्वत जैसा लग रहा था। पूज्य ऋषियों ने हार्दिक स्तुतियों से बलराम का सम्मान किया और उन्हें अमोघ कर दिया, अमोघ वर दिए ऋषियों ने, अमोघ वर दिए। तब उन्होंने उनका अनुष्ठानिक स्नान कराया। जिस तरह देवताओं ने इंद्र को औपचारिक स्नान कराया था, जब उसने वृत्र का वध किया था, वास्तव में ऋषि मुनियों ने बलराम जी से यह सब करवाया, क्योंकि वास्तव में बलराम जी ने उनके अहंकार को चूर चूर किया था। किनके अहंकार को? ऋषि मुनियों के अहंकार को। फिर जब तक बलराम जी की कृपा नहीं होगी तो उनका अहंकार कैसे चूर होगा? तो कहने का अर्थ है कि भगवान अपना ऐश्वर्य दिखाते हैं, उसके बावजूद भी अगर हमारा अहंकार चूर चूर नहीं होता है तो ये हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। तो बलराम जी ये चाहते थे। उन्होंने बलराम जी को कभी ना मुरझाने वाली कमल के फूलों से बनी वैजंती नामक माला दी, जिसमें लक्ष्मी जी रहती हैं। उन्होंने बलराम को दिव्य वस्त्रों की जोड़ी तथा आभूषण भी दिए। तत्पश्चात ऋषियों से विदा होकर भगवान ब्राह्मणों की टोली के साथ कौशिकी नदी गए, जहाँ उन्होंने स्नान किया। वहां से वे उस सरोवर पर गए जिसे सरयू नदी के निकलती है। तो इस तरह से बलराम जी तीर्थाटन के निकल गए और अलग अलग तीर्थ स्थानों में गए। जब अलग अलग तीर्थ स्थानों से निकल रहे थे तो बलराम जी ने क्या सुना? भगवान ने कुछ ब्राह्मणों से सुना कि किस तरह कुरुओं तथा पांडवों के बीच युद्ध में भाग लेने वाले सारे राजा मारे जा चुके थे। इससे उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि अब पृथ्वी अपने भार से मुक्त हो गई है। उस समय युद्ध क्षेत्र में भीम तथा दुर्योधन के मध्य चल रहे गदा युद्ध को रोकने की इच्छा से बलराम जी कुरुक्षेत्र गए। अब भीम और दुर्योधन के बीच में युद्ध चल रहा था, ऐसा सुना उन्होंने। और जब युधिष्ठिर, कृष्ण, अर्जुन तथा जुड़वा भाई नकुल तथा सहदेव ने बलराम को देखा तो उन सबों ने उन्हें नमस्कार किया, किंतु ये सोचते हुए कि हमें क्या बतलाने आए हैं, वैसा मौन रहे। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, उनके मौन रहने का कारण ये था कि बलराम जी दुर्योधन के प्रति कुछ कुछ स्नेहिल थे, क्योंकि दुर्योधन ने बलराम जी से गदा की कला सीखी, गदा युद्ध की कला सीखी थी, क्योंकि उनसे उन्होंने गदा युद्ध की कला सीखी थी। इसलिए जब युद्ध चल रहा था तो राजा युधिष्ठिर तथा अन्यों ने सोचा कि हो सकता है कि बलराम जी दुर्योधन के पक्ष में कुछ कहने आए हों, इसलिए वे मौन रहे। तो पांडवों को ऐसा लगा, राजा युधिष्ठिर को लगा कि बलराम जी को जब देखा तो उनको लगा शायद दुर्योधन के प्रति इनका स्नेह है, इसलिए हो सकता है कि उनके पक्ष में कुछ कहने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो बलराम ने देखा कि दुर्योधन तथा भीम अपने अपने हाथों में गदा लिए कलात्मक ढंग से चक्कर लगाते क्रोध से भरे एक दूसरे पर विजय पाने के लिए प्रयत्नशील हैं। भगवान ने उन्हें इस प्रकार संबोधित किया। बलराम जी ने कहा, हे राजा दुर्योधन, हे भीम, सुनो तो, तुम दोनों योद्धा युद्ध बल में समान हो। मैं जानता हूं कि तुम दोनों में से एक में शारीरिक बल अधिक है जबकि दूसरी कला में अधिक प्रशिक्षित है। तो जैसे हमने पहले ही बताया कि भीम जो है वो शक्ति में बलशाली थे, युद्ध बल में शक्तिशाली थे, और कला में दुर्योधन ज़्यादा प्रशिक्षित थे। क्योंकि तुम दोनों युद्ध बल में बिल्कुल एक जैसे हो, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि इस द्वंद में तुम में से कोई कैसे जीते या हारेगा। अतएव कृपा करके इस व्यर्थ के युद्ध को बंद कर दो। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, हे राजन, तर्कपूर्ण होने पर भी बलराम जी ने के अनुरोध को उन दोनों ने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वो लोग इतना भयानक युद्ध कर रहे थे एक दूसरे से, और बलराम जी उनको बता रहे हैं कि युद्ध बंद करो, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एक कला में दक्ष है और एक शक्ति में दक्ष है, तो इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा, आप लोग रोको इस युद्ध को। लेकिन अब वो क्या है कि क्रोध के कारण इतना युद्ध चल रहा था, वैसे ही एक दूसरे के प्रति इतना द्वेष, बचपन से ही वो दूसरे एक दूसरे के दुश्मन थे, अब समय आ गया था पूरा क्रोध प्रकट करने का, अब क्यों वो बलराम जी की बात सुने, है ना। तो कहने का अर्थ है कि जब अनर्थ इतने बढ़ जाते हैं, तो ऐसी अवस्था पहुंच जाती है, तो फिर ऐसे में क्या होता है कि कई बार हम गुरु की बात भी नहीं सुनते हैं, तो बलराम जी की बात भी नहीं सुन रहे हैं, दोनों लड़ते जा रहे हैं। इस निष्कर्ष पर पहुंचते हुए कि युद्ध भाग्य द्वारा आयोजित होता है, बलराम जी द्वारा लौट गए। वहां उग्रसेन ने तथा उनके अन्य संबंधियों ने उनका स्वागत किया, जो सभी उन्हें देखकर प्रफुल्लित थे। बाद में बलराम जी नैमिषारण्य लौट आए, जहां ऋषियों ने समस्त यज्ञों के साक्षात रूप
उन्हें प्रसन्नता पूर्वक विविध प्रकार के वैदिक यज्ञों को संपन्न करने में लगा दिया। अब बलराम जी समस्त युद्धों में अवकाश प्राप्त कर चुके थे। सर्वशक्तिमान बलराम जी ने ऋषियों को शुद्ध आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान किया, जिससे वे सभी बलराम जी के भीतर सारे ब्रह्मांड को देख सके और ये भी देख सके कि वे हर वस्तु के समाय में समाये हुए। अपनी पत्नी के साथ अभृत स्नान करने के बाद सुंदर वस्त्रों में सज्जित और अलंकारों से विभूषित तथा अपने निकट संबंधियों, अन्य परिवार वालों एवं मित्रों के से घिरे बलराम जी ऐसे भव्य लग रहे थे मानो तेजयुक्त अपनी किरणों से घिरा हुआ चंद्रमा हो। उन अनंत तथा अप्रमेय बलशाली भगवान बलराम द्वारा संख्य अन्य लीलाएं संपन्न की गई जो अपनी योग माया से मनुष्य के रूप में दिखते हैं। अनंत बलराम जी के सारे कार्यकलाप आश्चर्य में डालने वाले हैं। जो कोई भी प्रातः तथा सायं उनका निरंतर स्मरण करता है वह भगवान श्री विष्णु का अत्यंत प्रिय बन जाता है। तो ये मतलब क्या कहते हैं कि ये आशीर्वचन दिया जा रहा है, आशीर्वाद कथा के उपरांत। इसको कहते हैं श्रुति फल, श्रुति फल होता है कथा के बाद। तो ये श्रुति फल क्या है कि अगर बलराम जी के बारे में प्रातः हम सुनेंगे और सायंकाल में भी कथा सुनेंगे, निरंतर सुनेंगे, तो क्या लाभ मिलेगा? हम भगवत भक्ति में आगे बढ़ेंगे, भगवान के अत्यंत प्रिय बन जाएंगे। तो बलराम जी वास्तव में मूल विष्णु हैं और जो व्यक्ति प्रातःकाल तथा सायंकाल बलराम जी की लीलाओं का स्मरण करेगा वह निश्चय ही भगवान का महान भक्त बनेगा, ऐसा प्रभुपाद लिख रहे हैं। और इस प्रकार प्रत्येक दृष्टि से उसका जीवन सफल हो जाए। तो इस तरह से बलराम जी ने भी अपनी लीलाओं को संपन्न किया, उन्होंने तीर्थाटन करने का विचार किया इन असुरों का वध करके, और श्री कृष्ण ने भी जितने असुर मारने थे उन्होंने भी मार दिए। तो द्वारका की आगे की लीलाएं हैं और ये लीलाएं वास्तव में भगवान कृष्ण अपना विस्तार करते हैं वासुदेव कृष्ण के रूप में, और मूल कृष्ण जो है वृंदावन के कृष्ण ब्रज के परिकरों के साथ वापस गोलोक वृंदावन धाम को वापस जाते हैं। तो आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, आज आविर्भाव दिवस हम लोग मना रहे हैं, बलराम जयंती का दिन है, और हम इस दिन जो है बलराम जी के बारे में सुने, बलराम जी का गुणगान करें। आप सब पंजाबी भाग के जो भक्त हैं बड़े सौभाग्यशाली हैं कि यहाँ पर कृष्ण बलराम मौजूद हैं। शिल प्रभुपाद ने विचार प्रकट किया था, उन्होंने चिट्ठी लिखी थी हिज ग्रेस तेजस प्रभु को कि दिल्ली में कृष्ण बलराम का हमें विग्रह स्थापित करना चाहिए, और हमारे गुरु महाराज उन्होंने उनकी इच्छा को पूरा किया है। और प्रभुपाद ने भी लिखा ये अद्भुत मंदिर मतलब होगा जहाँ पर कृष्ण बलराम जी का विग्रह स्थापित किया जाएगा। ऐसे मंदिर में श्री कृष्ण बलराम का दर्शन करने के लिए, श्री कृष्ण बलराम का दर्शन करने के लिए अनेकों लोग आए भगवान का दर्शन प्राप्त करने के लिए। तो ये आपका नया वृंदावन है जैसे आगे आप कहते हैं पंजाबी भाग के भक्त, और इस नए वृंदावन में हम कृष्ण बलराम का दर्शन कर रहे हैं, राधिका रमन जी का दर्शन कर रहे हैं, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी का दर्शन कर रहे हैं। तो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी यहाँ पर वृंदावन में सही जगह पर विराजमान है। जगन्नाथ जी की हमेशा इच्छा होती है कि वो कहाँ जाएँ, नीलाचल से सुंदराचल जाएँ। तो पहले हमारे मंदिर में जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी थे, तो वहाँ से तो वो चले गए गाजियाबाद, है कि नहीं? एक तो वहाँ पे गाजियाबाद है जो महाराज जी कहते हैं कि वो जगन्नाथपुरी है, और ये है वृंदावन। तो हम सही जगह पर आए हैं और नीलाचल से हम सुंदराचल आए हैं, और यहाँ पर जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी का भी दर्शन प्राप्त हो रहा है हम सब भक्तों को। तो बहुत ही विशेष स्थान है, और आप सभी भक्तों से प्रार्थना है कि पूरा लाभ उठाएं आज इस दिन का, बलराम जी की स्तुति करें। हम देखेंगे कृष्ण बलराम जी का अभिषेक होगा आज के दिन, और हमारे गुरु महाराज श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज भी अभी कुछ ही देर में यहाँ पर आएंगे, महाराज जी का भी आप दर्शन प्राप्त करें। तो आपका कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, आज की कथा से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। तो बलराम जी का अर्थ यही है कि बल हमें देने वाले हैं, आध्यात्मिक बल देने वाले हैं, इसलिए उनका नाम बलराम है। राम का अर्थ है सबको आनंद प्रदान करने वाले, आध्यात्मिक बल के साथ आनंद भी प्रदान करते हैं बलराम जी। तो ये विशेष कृपा है। ऐसा गर्गाचार्य ने कहा, जब नामकरण किया बलराम जी का, कृष्ण बलराम का गौशाला में, तो बलराम जी का जब नामकरण किया तो ऐसा बताया उन्होंने, अपने प्रियजनों को, अपने मित्रों को, परिवार के सदस्यों को आनंद प्रदान करें, इसलिए राम है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि हम उस राम कृष्ण को नहीं, इस राम कृष्ण की हम भक्ति करते हैं, यानी कि ये राम कृष्ण जो भगवान है। और प्रभुपाद ने जब कृष्ण बलराम जी की स्थापना की वृंदावन में, रमन रीति में, तो कुछ भक्तों ने ये विचार प्रस्तुत किया कि प्रभुपाद आपने इस कारण से यहाँ पर कृष्ण बलराम की स्थापना की है क्योंकि ये रमन रहती है और यहाँ पर कृष्ण बलराम अपनी लीलाएं करते थे। प्रभुपाद ने कहा नहीं, इस विचार से नहीं। प्रभुपाद ने कहा वृंदावन में लगभग जितने भी मंदिर हैं वो सब राधा कृष्ण के मंदिर हैं। अगर हम कृष्ण बलराम जी का यहाँ पर कृष्ण बलराम जी को स्थापित करते हैं तो यहाँ फिर विशेष रूप से ज़्यादा लोग आएंगे क्योंकि और किसी मंदिर में कृष्ण बलराम है नहीं। तो ये भी एक प्रचार का तरीका है। इसी तरह से अगर आप जयपुर जाएंगे, जिसको गुप्त वृंदावन कहा जाता है, वहाँ पर भी मूल विग्रह हैं सब, राधा गोपीनाथ, राधा गोविंद देव, राधा विनोद बिहारी लाल, तो ये सब वहाँ मूल विग्रह हैं। और वहाँ पर भी हमारे वैष्णव ने, गुरुजनों ने दाऊजी गिरधारी का मंदिर स्थापित किया है, दाऊजी गिरधारी को स्थापित किया है ना। तो इसी सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए हमारे जो प्रभुपाद जी के शिष्य हैं वो भी इस प्रथा को आगे बढ़ा रहे हैं। तो वृंदावन में प्रभुपाद ने कृष्ण बलराम स्थापित किया और गुप्त वृंदावन में हमारे गुरुजनों ने वहाँ पर दाऊजी गिरधारी स्थापित किए हैं। तो इस तरह से प्रचार के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए नाना स्थानों में, अलग अलग स्थानों में ऐसे विग्रह स्थापित किए जाते हैं ताकि हम जैसे भक्त लोग जो हैं इसका लाभ उठा सकें। हरे कृष्ण। ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि आपने बताया है कि शास्त्रों को पढ़ने के बाद हमें विनम्रता हमारे अंदर होनी चाहिए, हमारे सद्गुण जागृत होने चाहिए, आत्मसंयमता की। तो शास्त्रों का अध्ययन हम लोग पढ़े वैष्णों के मार्गदर्शन में, इसलिए जब वो बंगाली कवि आए स्वरूप दामोदर के पास, तो स्वरूप दामोदर बंगाली कवि को कहा भागवत पढ़ो गया भागवत स्थाने, ये भागवत का अध्ययन करो, भागवत व्यक्ति के शरण में रहकर, खुद अध्ययन करोगे तो खतरा है। इसलिए प्रभुपाद जी के ग्रंथों को हमें पढ़ना चाहिए, लेकिन साथ में हमें भक्तों के बीच में इसकी चर्चा भी करनी चाहिए। इसलिए प्रभुपाद ने नियम बनाया है प्रातः काल में प्रत्येक दिन हम लोग भागवत का श्रवण करें, और जो मंदिर रोज नहीं आ सकते हैं वो यंत्र तंत्रों के द्वारा प्रवचन सुन सकते हैं, और कम से कम हफ्ते में एक दिन आकर वैष्णों के मुखारविंद से सुन सकते हैं। भागवत या कोई भी ग्रंथ शास्त्र का अध्ययन करते हैं, कार्यक्रम करते हैं, तो साथ में गुरु और साधु की सेवा भी होनी चाहिए। जब तक हम वैष्णव की सेवा नहीं करेंगे, गुरु की सेवा नहीं करेंगे, ये शास्त्रों का जो मर्म है वो हमेशा के लिए छुपा रहेगा। दिव्य ज्ञान हृदय में प्रकाशित होता है, ऐसा नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं। नरोत्तम दास ठाकुर ने ये नहीं कहा दिव्य ज्ञान बुद्धि प्रकाशिता, दिव्य ज्ञान दिमाग प्रकाशिता, नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। तो ये शास्त्रों का अध्ययन अगर हम करते हैं तो हमें गुरु की वैष्णों की सेवा करनी चाहिए। इसलिए भगवान गीता में कह रहे हैं उस अध्याय का शीर्षक है दिव्य ज्ञान, चौथा अध्याय, स्वयं साक्षात भगवान खड़े हैं अर्जुन के, लेकिन भगवान कह रहे हैं तत् विधि, विधि क्या है इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने की, तत् विधि क्या है, परिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेन तत्वदर्शिना। तो आप जाओ तत्वदर्शी के पास, और इसकी विधि तीन प्रकार से है। पहली विधि क्या है कि आप प्रणिपात करो, सबसे पहले हमें शरणागति लेनी पड़ेगी, शरण लेनी पड़ेगी ऐसे वैष्णव की, और उसके बाद फिर प्रश्न पूछें, जिज्ञासा करें, और जिज्ञासा करने के बाद फिर सो ना जाए, जिज्ञासा करने के बाद सेवया। तो ये सेवया शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक बार मदन मोहन मालवीय जी आए थे श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर के पास, और उनसे कुछ प्रश्न किया, उन्होंने सीधे आकर उन्होंने प्रश्न करना शुरू किया। उन्होंने कहा कि मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा, लेकिन आपसे प्रार्थना, आप सेवा करेंगे? अरे क्या, कुछ झूठे बर्तन हैं आप धोएंगे साफ करेंगे? तो उनमें नम्रता थी तो उन्होंने उनकी बात मान ली और उन्होंने बर्तन धोए। बर्तन धोने के बाद फिर वो पूछने आए, प्रश्न पूछने आए दोबारा। हाँ, भक्ति सिद्धांत महाराज उनसे पूछे कि अब आप बताइए आपका क्या प्रश्न है। तो उन्होंने कहा कि मुझे अपने प्रश्न का मुझे उत्तर मिल गया बर्तन धोने के बाद, सेवा करने के बाद। तो कहने का अर्थ यह है कि अगर हम भगवान को जानना चाहते हैं, इन शास्त्रों को जानना चाहते हैं, शास्त्रों के मर्म को जानना चाहते हैं, तो ये सेवा के माध्यम से ही हो सकेगा, और कोई तरीका नहीं है। वैष्णव सेवा करने का ही लाभ होता है, गुरु की सेवा करने का लाभ होता है कि फिर शास्त्र, जैसे कि जब चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत गए तो वहां पर एक ब्राह्मण था श्रीरंगम में, वो ग्रंथ का अध्ययन कर रहा था लेकिन उसको पढ़ना नहीं आता था ठीक से, अनपढ़ था वो, रो रहा था वो, और पास में खड़े हुए जो कर्मकांडी ब्राह्मण है वो हंस रहे थे, बोलते अरे मूर्ख व्यक्ति है, इसको कुछ पढ़ना वढ़ना आता नहीं है, ये क्या पढ़ेगा, संस्कृत तो जानता नहीं है, ना काला अक्षर भैंस बराबर, इसको क्या पता कि शास्त्र क्या होता है, ऐसे वो देखकर हंस रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे। महाप्रभु आए, चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि इसके हृदय में इतनी भक्ति है गुरु के प्रति, उस ब्राह्मण के गुरु ब्राह्मण के भक्ति देकर, गुरु के प्रति भक्ति देकर चैतन्य महाप्रभु बड़े आकर्षित हुए। तो महाप्रभु कहते हैं कि तुम रो क्यों रहे हो। तो ब्राह्मण ने कहा कि मैं ये देखकर रो रहा हूं कि कृष्ण परम भगवान है, कृष्ण परम भगवान है, लेकिन भगवान होने के बावजूद भी वो अर्जुन के सारथी बने हुए हैं, अपने भक्त की सेवा में लगे हुए हैं, ये दृश्य देखकर मैं रो रहा हूं। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा वास्तव में तुम ही भगवद गीता के असली मर्म को समझे हो, ये तो सब ऐसे ही चिल्ला रहे हैं, तुम ही असली मर्म को समझे हो, क्योंकि उसने उन्होंने कहा कि मेरे को मेरे गुरु ने कहा था कि रोज मुझे 18 अध्याय पढ़ने हैं भगवद गीता के, लेकिन मैं तो हूं मूर्ख। तो फिर चैतन्य महाप्रभु ने उसके ऊपर विशेष कृपा की। तो कहने का अर्थ यह है कि अगर शास्त्र का अध्ययन करने के बाद गुरु के प्रति, भगवान के प्रति हमारी शरणागति नहीं बढ़ रही है, वैष्णव के प्रति सेवा की भावना नहीं बढ़ रही है, तो सब बेकार है ना। ऐसे तो कथावाचक और शास्त्रों के ज्ञाता बहुत घूम रहे हैं समाज में, ऐसे ऐसे आपको शास्त्र वेता मिलेंगे जिनको सारे 18,000 श्लोक याद हैं, लेकिन भक्ति का कोई लक्षण नहीं। भगवद्गीता के सारे 7 श्लोक याद हैं, ऐसे आपको बहुत मिलेंगे, आप भारत में अभी भी हैं, लेकिन भागवत का, भगवद गीता का मर्म नहीं जानते हो। और ये मर्म जो है श्रील प्रभुपाद ने हमें सिखाया है, पूर्ववर्ती आचार्य ने हमें सिखाया है। तो प्रभुपाद ने इन शास्त्रों को इतना आसान कर दिया समझने के लिए कि प्रभुपाद जी ग्रंथों का पढ़ते हैं तो प्रभुपाद बार बार इसी बात पर जोर दे रहे हैं, सेवा पर जोर दे रहे हैं। इसे प्रभुपाद ने जो भक्ति का अनुवाद भी किया है, डिवोशनल सर्विस, सेवा। सुन तो लिया हमने लेकिन अब क्या करना है, जैसे अर्जुन भगवान से सुन रहे हैं कुरुक्षेत्र में, सुनने के बाद वो कह सकते थे भगवान को कि आपका प्रवचन मुझे बड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छा प्रवचन दिया आपने, संगीतमय प्रवचन दिया, अब मैं जा रहा हूं वापस हस्तिनापुर। लेकिन अर्जुन ने ऐसा नहीं कहा, अर्जुन ने कहा करिष्ये वचनम तव, अब आप जो कहेंगे वो मैं करने के लिए तैयार हूं। तो ये है मतलब शास्त्रों का अध्ययन करने का मतलब, कि भगवान जैसा कहते हैं वैसे हम करने के लिए तैयार हो जाते हैं सुनने के बाद, यानी कि भगवान के प्रतिनिधि जैसा कहते हैं, भक्त लोग जैसा कहते हैं, वैसा हम जब करने के लिए तैयार हो जाते हैं तो फिर समझिएगा कि हम, हाँ अब शास्त्र हमें समझ में आने लगा है। श्रील प्रभुपाद, हाँ जी माता जी जोर से बोलेंगे जरा प्रश्न सुनाएंगे। बलराम जी की प्रसन्नता के लिए क्या करना चाहिए, जो नए नए भक्त लोग जुड़े हैं उनको क्या करना चाहिए, तो उन लोगों को गुरु और वैष्णव की सेवा करनी चाहिए, इस तरह से बलराम जी की कृपा मिलेगी, है ना। और आज का दिन जो है सबसे अच्छा अवसर है कि हम बलराम जी से प्रार्थना करें कि अपने अपने गुरुजनों के प्रति, प्रभुपाद के प्रति, वैष्णव के प्रति हमारी सेवा भावना बढ़े, ये हम बलराम जी से आज प्रार्थना कर सकते हैं। गुरु की सेवा कैसे करनी चाहिए, गुरु की सेवा करनी चाहिए उनकी आज्ञा का पालन करके, सरल सी बात। और वो वैष्णव लोग, भक्त लोग जो गुरु की सेवा में परिपक्व हैं, ऐसे भक्तों का सानिध्य प्राप्त करें, और ऐसे भक्तों से सीखें कि गुरु की सेवा कैसे करनी चाहिए। वैष्णव ऐसे जो वैष्णव हैं जो गुरु की सेवा में तत्पर हैं, ऐसे भक्तों का संग करना चाहिए, ऐसे भक्तों की सेवा करनी चाहिए, तो निश्चित रूप से हमें बलराम जी की भी कृपा मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। हरे कृष्ण। श्री श्री कृष्ण बलराम की, श्री श्री बलराम जयंती महा महा महोत्सव की, श्री श्री राधिका रमण की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्ण।